समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास, जानेंगे क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल के मैदान की गतिविधियों और आर्थिक जगत पर हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन। परिक्रमा के आज के इस अंक के साथ मैं हूं लवली निगम और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। अनुजा नमस्कार।
नमस्कार एंड हेलो लवलीन। लवलीन, टुडे इज 2nd of April and this date marks the International Fact Checking Day, a global initiative that recognizes the role of accurate information in an interconnected world. The spread of misinformation is inherently human. The network effect of social media has broadened the sources of information and thus the construction of our narratives as well. As the name implies, fact-checking is proofreading, verifying the accuracy of the information included in a document or statement. Isn't it, Lavin?
जी, और ये जो डिजिटल युग है इसमें फेक न्यूज का जाल सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है और इसके बेहद भयानक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। गलत जानकारी फैलने से कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। ऐसे में तथ्यों की जांच बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कई फैक्ट चेक और वेरिफिकेशन वेबसाइट जो है तथ्यों की जांच करके लोगों को सच भी बता रही है और हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई इस तरीके की खबर हो रही है तो उसकी सच्चाई तक जाए।
ऑफकोर्स इन दिस इलेक्शन सीजन अ रेंज ऑफ थ्रेट्स अबाउंड, ट्रेडिशनल मिस इन्फॉर्मेशन, जेनरेटिव AI इमेजेस एंड वीडियोज एंड ऑफकोर्स डीप फेक्स मे कम अप स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन। Requesting all of you to safeguard yourself from falling for fake news and information and spreading it. It means that one must verify the facts they are asserting by checking the facts and figures one sees on social media before sharing it. We must be a responsible citizen and play a part in not spreading any misinformation. Moving on, and now shall we set the ball rolling with news making headlines at this hour, Lavlin?
Ji, shuruaat karte hain.
Election Commission appoints special observers in 6 states for the upcoming Lok Sabha and Assembly polls.
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई।
India condemned China for its repeated actions of renaming places in Arunachal Pradesh.
छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 9 माओवादी मारे गए।
Judith Suminwa Tuluka becomes the first female Prime Minister of the Democratic Republic of the Congo.
और IPL क्रिकेट में आज शाम बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला लखनऊ सुपर किंग्स से होगा।
And Lavlin, now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. And today we will talk about World Autism Awareness Day. Lavlin, as humans, we all need to feel accepted and understood. Even though some of us may tend to be more introvert or a slow learner, the person may be suffering from some kind of disease or syndrome or disorder. It is very natural for them to feel isolated and lonely without acceptance and understanding. And yes, autism is one such disorder which needs social awareness. Autism spectrum disorders are a diverse group of conditions characterized by some degree of difficulty with social interaction and communication. Other characteristics include atypical patterns of activities and behaviors, such as difficulty with transition from one activity to another, a focus on details, and unusual reactions to sensations. Every year, on 2nd of April, the global awareness event of World Autism Day is observed to raise awareness about autism spectrum disorders. This special day aims to spread awareness about autism as a disorder and to support those who are suffering from it. It is a global healthcare event that focuses on acceptance, support, and inclusion of autistic people and advocacy of their rights.
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ASD दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। भारत में भी इससे पीड़ित बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो एक चिंता का विषय है। 2021 में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक भारत में ऑटिज्म की अनुमानित संख्या 68 बच्चों में से लगभग एक हो सकती है।
Since it has been made a special day, 2nd of April, we observe this day. Autism spectrum disorder has no single known cause given the complexity of the disorder and the fact that symptoms and severity vary. There are probable many causes, both genetics and environment may play a role.
जी, हर साल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस की थीम अलग अलग तो होती है, जिसमें ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं उनके जीवन में सुधार के लिए अलग अलग विषय निर्धारित किए जाते हैं। इस वर्ष विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2024 का विषय है एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइस। इस बार की थीम का उद्देश्य ऑटिस्टिक लोगों को अधिक समर्थन और सशक्तिकरण प्रदान करना है। इससे उन्हें सार्थक जीवन जीने में मदद मिल सकती है और उन्हें सफल करियर बनाने में सक्षम बनाया जा सकता है।
Yes, I was referring about the different causes. What can be the different causes of autism? And among several causes, extreme prematurity of low birth weight, prenatal exposure to air pollution, maternal obesity, diabetes, immune system disorders, or genetics can lead to the development of autism spectrum disorder. And of course, no cure exists for autism disorder, and there is no one-size-fits-for-all treatment for that. So the goal of the treatment is to maximize your child's ability to function by reducing autism spectrum disorder symptoms and supporting development and learning. So I was talking about acceptance by the society for the autism disorder children. Awareness helps autistic children and it is important for their self-acceptance, for their confidence and of course for their mental health as well. A lack of acceptance can also have very harmful effects on children desperately trying to fit in with the world around them.
जी, जेनेटिक कारण और जन्म के साथ होने वाली किसी भी तरह की कठिनाई ऑटिज्म का मुख्य कारण माने जाते हैं। स्पीच डेवलपमेंट न होना, असामान्य संवेदनशीलता, हाथ या शरीर की असामान्य मूवमेंट, खेलना, आई कांटेक्ट न बना पाना, नाम अगर हम उसका ले रहे हैं तो रिएक्ट न करना, दूसरों के साथ कनेक्ट न कर पाना, खिलौनों से अजीब तरह से खेलना, ये कुछ लक्षण हैं जो ऑटिज्म की तरफ इशारा करते हैं। और अगर पता चलता है किसी को तो इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए।
ऑफकोर्स लवलीन, एंड आई कुड से autistic acceptance is about embracing them as they are, with their strengths and along with their weaknesses as well. Mm-hmm. Autistic pride is when autistic individuals feel secure and confident. And their acceptance is a therapy, which means recognizing that autistic people have unique strengths and challenges and that therapy should be tailored to their specific needs. It means understanding that the goal of therapy is not to cure the autistic people, but to support them in achieving their goals and living fulfilling lives. Rejection from peers can cause negative emotions that are difficult to handle. So autism children are often seen as dependent and helpless. These children may need more accommodations and assistance, and we should always be, as a society, ready for all these things.
Mm-hmm. और अगर कुछ लक्षण और देखे जाए अनुजा, तो है बच्चों का जो है देरी से बोलना शुरू करते हैं और फिर एक ही शब्द को बार बार रिपीट करते हैं। हम उनसे कुछ कह रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उसका जवाब नहीं देंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे। ज्यादातर समय अपने अकेले ही रहने में वो खुश रहते हैं, आंखें मिलाकर बात नहीं करते हैं, एक ही चीज को बार बार करते हैं और देखा जाए सामने वाले व्यक्ति की भावना को नहीं समझते हैं।
एब्सोल्युटली। सो स्टडीज हैव ऑल्सो कंसिस्टेंटली बीन टेलिंग अस दैट चिल्ड्रन हु फील एक्सेप्टेड बाय देयर पेरेंट्स हैव अ बेटर मोर सिक्योर relationship with their parents. A heightened sense of family connectedness should be there. So they may already struggle to communicate, connect and engage with others, but this rejection could discourage them from further developing their communication skills. So this is exactly why autism awareness can benefit everyone, not just the people with this type of syndrome, but it creates a more positive, tolerant world when we accept them as a normal human being.
जी, इसका कोई वैसे उपचार नहीं है, लेकिन विशेषज्ञ बिहेवियर थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के जरिए बच्चों में समस्या से जुड़े लक्षणों को कम करने का प्रयास जरूर करते हैं और जरूरत पड़ने पर दवा का भी सहारा लेते हैं, ताकि ऑटिज्म से पीड़ित बच्चा भी सामान्य लोगों की तरह जीवन जी सके।
Yes, Lavin, and we have been saying this that international days and weeks are occasions to educate the public on issues of concern. to mobilize political will and resources to address global problems and to celebrate and reinforce achievements of humanity.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या कुछ खास है। और इससे पहले आगे बढ़े अनुजा, भाषा हमारी पहचान है और भाषा हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा भी है। लद्दाखी भाषा बात करें, बोटी भाषा हमारी संस्कृति की पहचान और एक अटूट अंग है। इस भाषा को बढ़ावा देने के लिए 2022 से 1 अप्रैल को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में यह दिन बोटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कल यानी 1 अप्रैल को जिला लेह में बोटी दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया और हमारे लिए संवाददाता जिसकेत डोलमा इस बारे में और जानकारी दे रही है।
कल यानी 1 अप्रैल को जिला लेह के अलग अलग क्षेत्र में बोटी दिवस मनाया गया। कल सुबह से ही स्कूली बच्चे तथा स्थानीय लोगों को स्थानीय पोशाकों में देखा गया। स्कूली बच्चों ने स्थानीय व्यंजन का खास तौर सेवन किया। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तथा अन्य विभागों में बोटी दिवस के दिन भिन्न भिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और यहां भाषा के विशेषज्ञों ने इस भाषा के संरक्षण के लिए अपना विचार व्यक्त किया। बोटी दिवस को मनाने के उद्देश्य के बारे में कला संस्कृति एवं भाषा एकेडमी के एडिटर डॉक्टर थुप्सन नुरपू ने हमें बताया।
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हर साल की तरह 1 अप्रैल को बोटी दिवस मनाया गया। इस डे को मनाने के पीछे मेन उद्देश्य बोटी भाषा, जो कि लद्दाख का एक समृद्ध भाषा है, यहाँ की मातृभाषा है, इसका विकास एवं संरक्षण तथा लोगों में इस भाषा के महत्व को समझाने के उद्देश्य से मनाया गया। यहाँ लद्दाख के विभिन्न संस्थाओं में, शिक्षण संस्थाओं में तथा अन्य स्थानों में लोगों ने बड़े उत्साह के साथ इस भाषा के डे को मनाया गया। तो इसी से हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो भाषा एक समृद्ध भाषा होने के नाते लोगों में इसके संरक्षण को लेके, इसके विकास को लेके बहुत उत्साह है और आशा करते हैं कि आने वाले सालों में इसका विकास हो। इस उद्देश्य से हर साल 1 अप्रैल को बोटी डे मनाया जाता है।
बोटी भाषा के संरक्षण और इस भाषा को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में हर साल संगठनों द्वारा अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। परिक्रमा के लिए लेह में दिस्कित डोलमा।
और पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव हेतु प्रचार अभियान तेज हो गया है। पहले चरण में उत्तर बंगाल के 3 जिलों कूचबिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी लोकसभा सीट पर प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। कुल 42 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र यहां भरा है। निष्पक्ष, स्वतंत्र और निर्भीक चुनाव हेतु अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियां तैनात हैं। 7 अप्रैल को 50 कंपनियां और तैनात की जाएंगी। चुनाव आयोग भी व्यापक स्तर पर मतदाता जागरूकता अभियान चला रहा है और जानकारी लेते हैं अशोक चौरसिया से।
पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज होने लगा है। पश्चिम बंगाल के कुल 42 लोकसभा सीट पर 7 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। इस बार पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव उत्तरी बंगाल से शुरू हो रहा है। पहले चरण में उत्तर बंगाल के 3 जिलों के 3 लोकसभा सीट कूचबिहार, जलपाईगुड़ी व अलीपुर द्वार हेतु 19 अप्रैल के दिन मतदान कराए जाएंगे। तो दूसरी तरफ चुनाव में गड़बड़ी, हिंसा या अराजकता को रोकने एवं मतदाताओं में भय मुक्त होकर मतदान करने हेतु विश्वास जगाने के लिए 1 मार्च से अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियां संबंधित क्षेत्रों में तैनात हैं। पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में चुनाव कराने का निर्णय चुनाव आयोग ने लिया है। प्रथम चरण में होने वाले 3 सीटों के चुनाव हेतु 42 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरा है। कुछ बिहार सीट पर 18, अलीपुर द्वार सीट पर 11 व जलपाईगुड़ी सीट पर 13 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरा है। कुछ बिहार से बीजेपी नेता व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में फिर चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुख्य मुकाबला टीएमसी के जगदीश चंद्र बर्मन से है। इसी तरह अलीपुर द्वार सीट पर बीजेपी ने अपने वर्तमान सांसद तथा केंद्रीय अल्पसंख्यक राज्य मंत्री जोन बारला के स्थान पर मादरी हाट के अपने विधायक मनोज तिग्गा को मैदान में उतारा है। उनका मुख्य मुकाबला टीएमसी के नेता प्रकाश चिक बराइट से है। जलपाईगुड़ी सीट से बीजेपी ने अपने वर्तमान सांसद डॉक्टर जयंत कुमार रॉय को मैदान में फिर से उतारा है। उनका मुख्य मुकाबला टीएमसी के निर्मल चंद्र रॉय से होगा। सभी दल अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार को तेज गति दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में 3 सीटों पर दार्जिलिंग, बालूरघाट व रायगंज में 26 अप्रैल को मतदान होंगे। इन सीटों पर नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया 28 मार्च से शुरू हो गई है तथा 4 अप्रैल तक चलेगी। चुनाव आयोग भी मतदाताओं को जागरूक करने का अभियान डीएम ऑफिस, एसडीओ ऑफिस तथा बीडीओ ऑफिसों से संचालित कर रहा है। परिक्रमा के लिए अशोक चौरसिया, आकाशवाणी कर्शियांग।
And Lavin, in view of the upcoming Lok Sabha elections, we have been bringing for our listeners a capsule based on state profile, giving the details of number of phases, the date of polling, number of seats and other relevant facts by our correspondents. First, let's go to Madhya Pradesh. In Madhya Pradesh, Chindwara Lok Sabha seat remains a prestigious seat for both the BJP and the Congress parties. More than 16 lakh voters will decide the fate of 15 candidates on this seat in the first phase on the 19th of April. We have more on this from our correspondent.
A total of 15 candidates are trying their fate in Chindwara. Congress has fielded Nakul Nath, sitting MP and son of former Chief Minister Kamal Nath, while BJP has given ticket to Bunty Vivek Sahu. Apart from the candidates of Bahujan Samaj Party, Rashtriya Gondwana Party, Gondwana Ganatantra Party, Republic Party of India, 7 independent candidates are also in the fray. Chindwara Lok Sabha constituency consists of 7 assembly seats. The total number of voters in Chindwara is about 16,28,000. In fact, except for one Lok Sabha by-election in last 44 years, Congress or rather Kamal Nath has dominated this seat. In the last Lok Sabha elections also, BJP had won 28 seats out of 29 in the state except Chindwara. Hence, this time Chindwara has become a most important priority for the BJP. Sanjeev Sharma, Akashwani News, Bhopal.
And next, we are bringing you a report on Sambalpur seat in Odisha. Starting from the 13th of May, simultaneous voting will take place for 21 Lok Sabhas and 147 assembly seats in 4 phases. The constituency has 7 assembly segments where a total number of 14,78,369 voters will exercise their franchise. Sambalpur seems to be very high-profile seat from where Union Cabinet Minister Sri Dharmendra Pradhan from the BJP party and BJD's Organizational Secretary Pranab Prakash Das are contesting. Here is a report from our correspondent.
The Sambalpur Lok Sabha constituency in Odisha is gearing up for a high-profile contest after the ruling Biju Janata Dal BJD fielded its organizational secretary and sitting Jajpur MLA Pranab Prakash Das against the Union Education Minister Dharmendra Pradhan, the BJP's face in Odisha. The Sambalpur Lok Sabha seat is unique. No party can claim it as a stronghold. In the last 3 elections in 2009, 2014 and 2019, Sambalpur voted in favor of 3 parties, Congress, BJD and BJP candidates in the Lok Sabha elections. The unique candidates' vote margins were 9 to 30,000 during these 3 elections against their nearest rivals. Before 2009, when the BJD and the BJP formed an alliance, Prasanna Acharya, a BJD candidate, won thrice from Sambalpur Lok Sabha seat in 1998, 1999 and 2004. The Congress has not yet declared its Lok Sabha candidate for the Sambalpur seat. The Sambalpur seat will go to polls in the 6th phase on May 25th. Tapan Maharana, Akashwani News, Cuttack.
And now we take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
वर्ष 1870 में आज ही के दिन यानी 2 अप्रैल को पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा एक सामाजिक राजनीतिक संगठन था जिसका उद्देश्य सरकार और लोगों के बीच एक मध्यस्थ संस्था के रूप में काम करना और भारतीयों को उनके वैधानिक अधिकारों से अवगत कराना था।
महादेव गोविंद रानाडे, भवन राव श्रीनिवास राव पंत प्रतिनिधि, गणेश वासुदेव जोशी और एसएच चिपलुंकर ने 1867 में इसका गठन किया था। इस सभा के अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों में एम कुंटे, विष्णु एम भिडे, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल हरिदेशमुख शामिल थे।
सार्वजनिक सभा एक ऐसा संगठन था जो क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधि था, इसलिए इसके पहले 95 सदस्य 6,000 लोगों के बीच में से चुने गए थे। ये सदस्य ज्यादातर समाज के शिक्षित मध्य वर्ग के थे, जिसमें वकील, शिक्षक, पत्रकार तथा न्यायिक और शैक्षणिक विभागों के सरकारी कर्मचारी शामिल थे।
अधिकांश सदस्यों के ऊपरी मध्य वर्ग से होने के बावजूद सभा की सदस्यता सभी जाति और वर्ग के लोगों के लिए खुली थी। सार्वजनिक सभा का उद्देश्य सरकार और लोगों के बीच एक संपर्क सूत्र के रूप में काम करना था। इस संगठन ने व्याख्यान, भ्रमणों और बैठकों का आयोजन किया और लोगों में राष्ट्रीय गौरव की भावना भरने का प्रयास किया। इसने अकाल के दौरान राहत कार्य का भी संचालन किया।
सभा ने स्वदेशी को बढ़ावा दिया और 1877 में अपने सदस्य गणेश वासुदेव जोशी को हाथ से बुने खादी वस्त्रों में दिल्ली दरबार भेजा। दरबार में जोशी ने एक उद्धरण पढ़ा जिसमें ब्रिटेन की महारानी से भारतीयों को भी ब्रिटिश नागरिकों की तरह समान राजनीतिक और सामाजिक दर्जा देने की मांग की गई थी।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बाल गंगाधर तिलक सहित राष्ट्रीय महत्व के कई नेता पुनः सार्वजनिक सभा की ही देन थे। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होने तक इस सभा ने एक प्रमुख राजनीतिक संगठन के रूप में सेवा की।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 2 अप्रैल का दिन विशेष महत्व रखता है। 1942 में इसी दिन कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत से सहयोग समर्थन के लिए संवैधानिक प्रस्तावों के साथ 22 मार्च 1942 को क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा गया।
दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन की हार के कारण भारत पर जापान के हमले की धमकी अब वास्तविकता में बदलती लग रही थी और ऐसे में भारत का समर्थन महत्वपूर्ण हो गया था। मित्र राष्ट्रों से भी ब्रिटेन पर दबाव था कि वो भारत का समर्थन प्राप्त करे। भारतीय राष्ट्रवादी नेता एक शर्त पर ब्रिटेन के समर्थन के लिए तैयार थे कि सत्ता तुरंत हस्तांतरित कर दी जाए और दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए।
कैबिनेट मिशन के मुख्य प्रस्ताव थे स्वतंत्र उपनिवेश के दर्जे के साथ भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी और विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद नया संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन होगा। इस सभा के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर आंशिक रूप से प्रांतीय विधानसभाओं से निर्वाचित किए जाएंगे और आंशिक रूप से रियासतों के नरेशों द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। इस प्रकार सभी सदस्य भारतीय होंगे।
ब्रिटिश सरकार ने भी एक उपनियम लगाया कि वो इस शर्त पर नए संविधान को स्वीकार करेगी कि जो प्रांत संघ में शामिल नहीं होना चाहते हैं उनका अलग संविधान होगा और वे अलग संघ बना सकेंगे। मुस्लिम लीग ने एकल भारतीय संघ के विचार की आलोचना की। राष्ट्रवादी नेताओं ने भी प्रांतों के अलग होने के अधिकार के विचार को खारिज कर दिया क्योंकि ये राष्ट्रीय एकता के सिद्धांत के विरुद्ध होता। अन्य समूहों ने भी प्रांतों के अलग हो सकने के अधिकार पर आपत्ति की।
बातचीत में आए इस व्यवधान ने भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील साबित हुआ।
And in the business news for today, benchmark equity indices snapped a 3-day winning streak to close marginally lower today. BSE Sensex declined 111 points or 0.15% to finish at 73,904. The NSE Nifty fell 9 points or 0.04% to settle at 22,453. In the forex market, the rupee ended marginally lower at 83 rupees and 39 paise against the US dollar today. At the multi commodity exchange, gold futures for June contracts were trading around 68,725 rupees per 10 grams, while silver was trading around 76,517 rupees per kilogram when reports last came in. And if we talk about the intraday trade, Brent crude was trading at $89.02 per barrel.
खेल जगत से बात करें तो टेबल टेनिस में भारत की शीर्ष वरीयता प्राप्त पुरुष डबल्स जोड़ी मानव ठक्कर और मानु शाह स्लोवेनिया में WTT फीडर ऑटोसेक के उपविजेता रहे। भारतीय खिलाड़ी फाइनल मुकाबले में दक्षिण कोरिया के किम मिन हॉक और पाक गैंगयोन से हार गए। और आईपीएल में क्या है अनुजा?
यस लवलीन, इन आईपीएल क्रिकेट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विल फेस लखनऊ सुपर जायंट्स एट द एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम इन बेंगलुरु टुडे। द मैच विल स्टार्ट एट 7:30 PM IST, while Rajasthan Royals defeated Mumbai Indians by 6 wickets at the Wankhede Stadium in Mumbai last night.
की बात करते हैं जिनकी आज जयंती है, जन्मदिन है या पुण्यतिथि है।
राइट, एंड वी स्टार्ट विथ सलीम दुर्रानी, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू रिसीव द अर्जुना अवार्ड। नोन फॉर हिज हार्ड हिटिंग प्रोवेस, दुर्रानी प्लेड अ पिवटल रोल इन इंडिया सक्सेस अगेंस्ट इंग्लैंड इन 1961-62। हिज लेगेसी कंटिन्यूज टू इंस्पायर एस्पायरिंग क्रिकेटर्स। Salim Durrani, the debonair Indian cricketer of the 1960s with movie star looks, and he had a typical sense of humor as well, and a penchant for hitting monstrous sixes on demand, passed away on this day in the year 2023.
जी 2011 में उन्हें सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, जो भारतीय क्रिकेटर द्वारा किसी पूर्व खिलाड़ी को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। और इन्होंने आखिरी टेस्ट फरवरी 1973 में खेला था मुंबई में इंग्लैंड के खिलाफ। इनको जो है क्रिकेट का जादूगर कहा जाता है। और इसके अलावा एक और क्रिकेटर की हम बात कर लें, कुमार श्री रणजीत सिंह जी की, जिनकी आज पुण्यतिथि है। 2 अप्रैल 1933 में इनका हुआ था। ये भी भारतीय क्रिकेट के जादूगर हैं। रणजीत सिंह प्रथम टेस्ट मैच खिलाड़ी थे, उन्होंने इंग्लैंड से अपना क्रिकेट खेल की शुरुआत की, और उन्हीं के नाम पर या उन्हीं को सम्मान देने के लिए अनुजा भारत में जो प्रथम श्रेणी का क्रिकेट टूर्नामेंट है रणजी ट्रॉफी, वो शुरू किया गया। और इस टूर्नामेंट का शुभारंभ 1935 में पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह ने किया था। रणजीत सिंह भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक थे।
यस एंड नाउ इफ वी कम टू द बर्थ एनिवर्सरीज, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, who was one of the most popular vocalists of India and belonged to the Patiala Gharana, is having his birth anniversary today. Music ran in his family for 5 generations. Ustad Bade Ghulam Ali was a sarangi player before he became a full-fledged vocalist. When Ustad Kale Khan died, a musician remarked that music was dead with Kale Khan. But this put young Ghulam Ali on his mettle, and for the next 5 years, he practiced rigorously. Ghulam Ali was gifted with all major attributes of a great musician: musical lineage, rigorous taaleem, high artistic sensibility, phenomenal voice range, and astounding virtuosity.
जी विलक्षण मधुर स्वर के स्वामी थे। इनके गायन को सुनकर अनुजा श्रोता अपनी सुदबुद्ध खो देते थे। कुछ समय के लिए ऐसा लगता था कि वो संगीत की दुनिया में जो है एकदम जम गए। कोने कोने से संगीत के पार के लोग खास आपके गायन को सुनने न्योता भेजते थे। तो सुनते हैं एक उनका।
He was one of those rare musicians whose music appealed to both seasoned music connoisseurs and the layman also. If we talk about his awards, he was honored with the Padma Bhushan Award in 1961 and the Sangeet Natak Academy Award in 1962.
और अब एक और समाज शास्त्री और सामाजिक उद्यमी की बात करें, बिंदेश्वरी पाठक की हम बात कर रहे हैं, जिनका जन्म 1943 में आज ही के दिन हुआ था। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे, जो एक भारत आधारित सामाजिक सेवा संगठन है और शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकारों, पर्यावरण, स्वच्छता, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों, अपशिष्ट प्रबंधन और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देती है। बिंदेश्वर पाठक भारतीय रेलवे के स्वच्छ रेल मिशन के ब्रांड एम्बेसडर भी थे।
Various national and international awards for his work with this organization. He was presented with the Lal Bahadur Shastri National Award for Excellence in Public Administration, Academics and Management for the year 2017. He was conferred the Padma Vibhushan, India's highest civilian award, posthumously in 2024, and the Padma Bhushan in 1991.
एक और बॉलीवुड अभिनेता उनका भी जिक्र कर लें, जिनका आज जन्मदिन है। हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेता, निर्देशक, निर्माता अजय देवगन की। हिंदी सिनेमा के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं। अजय देवगन को बेहतरीन अभिनय के लिए 2 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया है, फिल्म फेयर अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर, और इसके अतिरिक्त भारत सरकार की तरफ से 2016 में पद्मश्री से भी उन्हें सम्मानित किया गया। एक ऐसे संजीदा अभिनेता है अनुज, जो अपनी आंखों से ही सारा अभिनय कर देते हैं।
Yes, of course, and he got the national award. You were mentioning about the awards for his movie Tanaji, and we have selected a song which was filmed on him. Let's hear that.
बोल दो अगर तुम्हें प्यार। और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम दें। तो लवली निगम और अनुजा कुमार की तरफ से नमस्कार।